हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवा अध्याय श्लोक संख्या 34। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाखय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपीश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद नवा अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक नंबर 34 अत्यंत ही सुंदर श्लोक है। भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कृष्ण आप सदैव मेरे मन में बसो और भगवान के किस स्वरूप को वो अपने मन में बसाना चाहते हैं उसके विषय में वो अत्यंत ही सुंदर यहाँ पर कह रहे हैं। मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भीष्म देव कह रहे हैं, युधितुर गरजो विधूम्रवेश्वक कचलुलित शमवार्यलंकृतासि मम निशित शरैर विभेद्यमान वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युधितुर गरजो विधूम्रवेश्वक कचलुलित शमवार्यलंकृतासि मम निशित शरैर विभेद्यमान वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युधितुर गरजो विधूम्रवेश्वक कचलुलित शमवार्यलंकृतासि मम निशित शरैर विभेद्यमान वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युधितुर गरजो विधूम्रवेश्वक कचलुलित शमवार्यलंकृतासि मम निशित शरैर विभेद्यमान वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युधि तुरगरजो, युधि अर्थात युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में, आज भीष्म पितामह उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में ही है, परंतु आज युद्ध नहीं है। वो युद्ध के समय को याद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और उनके सामने आते ही भीष्म पितामह का मन युद्ध में चला गया और वो कहते हैं युद्ध ही यानी युद्ध स्थल के समय जब युद्ध हो रहा था तुरग रजो, तुरग कहते अश्व को, अश्व माना घोड़े और रज यानी मट्टी। घोड़े जब चलते थे युद्ध के समय, जब आप रथ हांक रहे थे उस समय जब घोड़े जोर जोर से चलते थे तो उनके खुर से जब फर्श पे जब जोर से वो खुर रखते थे तो मट्टी उड़ती थी और उसकी रज विधूम्र विश्वक, विधूम्र मतलब वो धुएं की तरह उड़ती थी मट्टी और आपके केशों पे लहराते थे। विश्वक मतलब जो लहराते हुए आपके केश होते थे उस पर आके मट्टी धुएं की तरह आती थी और आपके केश जो है वो मटियाले हो जाते थे। भगवान को याद कराए भीष्म देव कि याद है कृष्ण जब तुम घोड़े चलाते थे, रथ चलाते थे और घोड़े जोर जोर से चलते थे, मट्टी उड़ती थी और तुम्हारे घुंघराले हुए केशों पर वो मट्टी पूरी उड़ती थी और मट्टियाले हो जाते थे। वास्तव में भगवान के केश है ना, वो सदैव रज से सीमित होते थे। रज में गौ रज से, रज में जब जाते थे गौओं को चराने के लिए तो गौएं जब चलती थी तब मट्टी उड़ाती थी और भगवान के केश पर, और यहाँ कुरुक्षेत्र में तुरग रजो अश्वरग रज जो अश्व रथ के जो घोड़े जब चलते थे उससे जो रज उड़ती थी उससे भगवान के बाल जो लहराते रहते थे इतने सुंदर लगते थे भगवान, और ऐसे लहराते लहराते बालों पे मट्टी जब आती थी तो आगे कहते हैं कचलुलित शमवार्य अलंकृतास। कच कच यानी बाल, यानी जो बाल होते हैं उसको कच बोलते हैं, और लुलित मतलब बिखर जाते थे। अब जाहिर सी बात है भगवान इतना जोर जोर से रथ चलाते थे और रथ चलाने में इतना तेज तेज से घोड़ों को चलाते थे तो बाल बिखरते थे भगवान के। और श्रमवार्य, श्रमवार्य यानी पसीना, पसीना निकलता था। अब रथ चलाने में भगवान इतने व्यस्त होते थे, अर्जुन को जब दूसरे योद्धाओं के तीरों से बचाने के लिए कभी दाएं चलाते थे, कभी बाएं चलाते थे, कभी रोकते थे, कभी और भी तेज से चलाना पड़ता था, बहुत श्रम करना पड़ता था। तो इस कारण से श्रमवार्य यानी पसीने की बूंदें उभरती थी भगवान के सुंदर मुखारविंद से, और इससे भगवान इतने सुंदर, भगवान की वात्सल्य में यहाँ से भगवान की भक्त वात्सल्यता सूचित हो रही है। कृष्ण उस समय पूरी शक्ति लगाकर रथ हांकते थे कि मेरा सखा विजय हो जाए, कहीं उस पर किसी दूसरे योद्धा का आक्रमण न हो, कहीं मेरे मेरे सखा को कोई क्षति ना पहुंचे, वो बहुत ही तल्लीनता से रथ को चलाते थे। कभी कभी कोई महारथी जब कोई बहुत भयंकर अस्त्र चलाते थे तो उससे बचाने के लिए रथ को इधर उधर करना होता था, कभी नीचे करना, कभी ऊपर करना, कभी तेजी से आगे बढ़ाना। तो इससे क्या होता था कि विश्वक, ये जो भगवान के जो केश थे वो लहराने लगते थे ना। अब जोर जोर से चल रहा है तो ऐसे जैसे जैसे रथ हिलता था, रथ चलाते थे जोर से, रथ हिल रहा होता था तो भगवान का शरीर भी हिल रहा होता था। और भगवान जब भगवान का शरीर जैसे घोड़े पे बैठते हैं या तांगे पे बैठते थे, कैसे हिलता है जोर जोर से, यदि तो हिलने से भगवान की अलकें भी हिलती थी, भगवान की जो लटें थी ना वो भी हिलती थी। और साथ साथ में क्या होता था, श्रम वार्य लंकरता से श्रम पसीना उनके मुखमंडल पे उभरने लगता था। लेकिन भगवान इतने व्यस्त होते थे कि उनके पास समय नहीं होता था कि वो रुमाल उठाएं और अपने पसीने को साफ करें, फुर्सत नहीं थी। भगवान को रथ चलाने से फुर्सत नहीं थी, एक हाथ में भगवान के घोड़े की रास थी और दूसरे हाथ में चाबुक, एक हाथ में रस्सी पकड़ी हुई थी, दूसरे हाथ में चाबुक पकड़ा था। तो यहाँ पर कहते हैं लोलित श्रमवार अलंकृता से, तो लोलित श्रमवार घुंघराले बाल जब लहराते थे तो फिर उससे क्या होता था, और पसीना पहुंचने के का काम उनके घुंघराले लहराते हुए बाल स्वयं ही भगवान का पसीना पहुंचे थे। भगवान के पास इतना समय नहीं होता था, भगवान की उस समय केवल एक ही इच्छा होती थी कि मैं अपने भक्त को किसी तरह से क्षति होने से बचाऊं। तो इस तरह से ये कार्य भगवान के लहराते हुए बाल स्वयं कर लेते, और कुछ बूंदें जो रह जाती थी, अब जाहिर सी बात है पसीने से इतनी ज्यादा बूंदें आती थी और कुछ तो साफ हो जाती थी, कुछ रह जाती थी, तो जो रह जाती थी तो भगवान के सांवले सलोने मुखारविंद पर ऐसे लगता था मोती चमक रहे हैं। इतने और भी भगवान ज्यादा सुंदर लगते थे, अलंकृत, और भी ज्यादा भगवान को ऐसा लगता था सुशोभित हो गए, भगवान और भी ज्यादा सुंदर लगते थे, इतने स्वीट लग रहे थे। कभी देखो सूर्य चल रहा होता था, एक तो उनके वस्त्रों के विषय में पहले हमें कल बताया कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, तीनों लोकों के समस्त जीवों को आकर्षित करने वाला स्वयं कामदेव भी भगवान की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है, भगवान की सुंदरता को देखकर घायल हो जाता है। और भगवान के वस्त्र रविका रगा रवराम भरम ददा, सूर्य की किरणों से के समान उज्जवल भगवान के पीतंबर को, और वपुरलक कुलावृतानाभम, और भगवान के मुखमंडल पर जो लटकी हुई अलकों से सजा हुआ होता था। तो आज उन्हीं भगवान के विषय में वो कह रहे हैं कि वो भगवान जब रथ चलाते हैं और मट्टी उड़ती है, वो मट्टी उनके घुंघराले बालों पर लगती है तो बाल मटियाले हो जाते हैं और उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें आती हैं और वो इतने सुंदर लगते हैं, कचलोलित श्रमवार अलंकृता से बहुत सुशोभित होते हैं। और उनके साथ साथ भगवान को एक और बात याद करा रहे हैं, भगवान को कहते हैं कृष्ण मम निशित शराय विभिद्य मम निशित शराय, मम यानी मेरे, आपको याद है उस तरफ आप थे और इस तरफ मैं था, मैं तीखी तीखे बाण, निश्चित का मतलब बहुत ज्यादा तीक्ष्ण, बहुत ज्यादा नोकीले बाण चला रहा था और मेरे बाणों से शरय मतलब बाण विभिद्यमान, तो आपकी मेरे बाणों ने आपका कवच भी तोड़ दिया था, आपने कवच पहना था लेकिन मेरे बाण जो थे वो उनके कारण आपका कवच टूट गया। और त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण, त्वचि विलसत यानी त्वच, आपकी कवच को तोड़ने के बाद आपकी त्वचा में छेद हो गया मेरे बाण लगने से, और घाव में से रक्त जब निकलने लगा, कवच टूट गया था, कवच लटक रहा था, आपके पास इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि आप पुनः उस कवच को बांध दो, वास्तव में भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। भगवान को अपनी उस समय कोई चिंता नहीं थी कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कवच मेरा टूट गया है, लटक रहा है मेरे मुखारविंद पर, भगवान की पसीने की बूंदे आ रही हैं, मट्टी से केश भर गए। बस भगवान इतनी सुंदर, और यहाँ पर कह रहे अलंकृता से, वो भी सुंदर। ऐसे संस्कृत में कहावत है सुंदरे किमत सुंदरा, यानी कि जो सुंदर व्यक्ति होता है उस पे हर एक वस्तु सुंदर ही लगती है। यानी कोई अगर बहुत सुंदर व्यक्ति होता है ना, उसको कोई भी डिजाइन की ड्रेस पहना दो, अब वो इतना सुंदर है कि वो हर डिजाइन की ड्रेस उसको सुंदर ही दिखेगी। इसलिए भगवान का कवच फट गया। कोई कोई ऐसी लड़कियां होती है सुंदर लगती है, वो डिजाइन फटा हुआ पहनती है तो भी बोलते ना वो कितनी अच्छी लगती है। और कोई अच्छी लड़की नहीं होगी, सुंदर नहीं होगी, उसको अगर साई वाला बिना दे तो भी इतनी सुंदर नहीं लगती। तो यहाँ पर भगवान है त्रिभुवन कमनम, सुंदरों में सबसे ज्यादा सुंदर, जिसको देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव भी मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे भगवान जिनके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेव उनको देखकर घायल हो जाते हैं, मुंह छुपाने लगते हैं कि कहीं मेरी उपमा न दे दें भगवान से, कहीं कंपैरिजन न किसी कोई कर ले। तो ऐसे भगवान चाहे कैसा भी स्वरूप धारण करते ना, वो सुंदर ही लगेंगे। भगवान की सुंदरता में कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, चाहे बाल मेले हो जाए, चाहे मुखमंडल पर पसीना आ जाए, या चाहे उनका कवच फट जाए और वो टूट जाए और उनके सीने से खून निकलने लगता है, फिर भी वो इतने आनंद, भगवान का स्वरूप है विलसत कवच स्तुक विलसत, वो इसमें भी आनंद का अनुभव करते हैं, आनंद लेते हैं। भगवान जो भी कार्य कर रहे होते हैं उसमें उसको उनको आनंद आ रहा होता है। युद्ध भूमि में वो क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे हैं तो क्षत्रिय की तरह तीर खाते हैं, और सारथी बने हुए हैं तो सारथी की तरह हरथ हांकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान आनंदमय विलसत, वो बहुत ज्यादा आनंद, भगवान को बहुत आनंद आ रहा है ये सब करते हुए, क्योंकि भगवान का स्वरूप साक्षात आनंदमय है। भगवान कभी मूर्तिमान आनंद है, भगवान जो है वो नख से शिख तक आनंदमय है। भगवान अगर ऐसे कभी सोचें, दुख देखना भी चाहे ना, अगर इच्छा भी करें कि मैं दुखी होना चाहता हूँ, तो भी भगवान ये नहीं कर सकते। भगवान की भाग्य में दुख देखना ही नहीं है, भगवान का मतलब ही आनंदमय। एक कवि बहुत ही सुंदर लिखते हैं कि लक्ष्मी यदि सोचे कि मैं दरिद्र हो जाऊं तो संभव नहीं है, क्योंकि जहां पर लक्ष्मी जाएगी वहां पर धन दौलत ऐश्वर्य स्वतः आएगा। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी के पीछे पीछे आएगा, लक्ष्मी ही तो धन है, तो वो कभी भी दरिद्र नहीं हो सकती। उसी प्रकार यदि सरस्वती माता की कभी इच्छा हो कि मैं मूर्ख हो जाऊं तो संभव नहीं है, क्योंकि विद्या की देवी है, वो साक्षात मूर्तिमान विद्या है, तो वो कभी मूर्ख नहीं हो सकती। उसी प्रकार गंगा मैया यदि सोचे कि मुझे पाप के दर्शन करने हैं तो संभव नहीं है, क्योंकि गंगा का स्पर्श पाते ही अपराध नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि सूर्य सोचे कि आज मैं अंधकार से भेंट करना चाहता हूँ, किसी गुफा में चले जाए अंधकार से मिलने के लिए, तो अभी वो आए नहीं हो, बहुत बहुत दूर हो करोड़ों माइल्स तक, और अभी तक क्षत्रिय से बाहर ही नहीं निकले, तभी से अंधकार समाप्त हो जाएगा। अंधकार से भेंट नहीं कर सकते सूर्यदेव। उसी प्रकार कृष्ण यदि चाहे कि मैं दुखी हो जाऊं तो वो नहीं कर सकते, वे इसके लिए लाचार है। वास्तव में भगवान मूर्तिमान सुख है, आनंद ही आनंद है, नक्षिक तक आनंदमय है, सुखमय है। भगवान कुछ भी करें भगवान को दुख नहीं हो सकता, दुख होता ही नहीं है, भगवान के भाग्य में नहीं है कि वे दुखी हों। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जो अनंत आनंदमय है, जो भगवान आनंद के मूर्तिमान स्वरूप है, तो उनमें से हम जैसे दुखमय लोग कैसे उत्पन्न हो गए? ये भौतिक सृष्टि जो कि जिसमें केवल दुख ही दुख है, और हम जीव जो कि दुखमय है, लेकिन हम भगवान का अंश है, तो फिर हम क्यों भगवान आनंदमय भगवान से हम कैसे उत्पन्न हुए? वैसे वास्तविकता ये है कि हम भगवान के चिन्मय देह से उत्पन्न नहीं हुए हैं, बस हम भगवान आध्यात्मिक हैं और हम उनकी तटस्थ शक्ति हैं। आध्यात्म लोक की नहीं है, हम तटस्थ शक्ति हैं। हमें भगवान ने ये स्वतंत्रता दी है कि अगर आप आनंदमय होना चाहते हो तो आप हमारी आध्यात्मिक शक्ति में प्रवेश कर दो, और वहां पर आकर मेरी सेवा करने के बाद आप आनंदमय हो सकते हो। लेकिन जीव इतना मूर्ख है, कहता है कि नहीं, आपकी सेवा करके नहीं, मुझे इंद्र तृप्ति करके आनंदित होना है। तो भगवान उसे वो चांस भी प्रोवाइड करते हैं कि ठीक है, अगर आपको अपने आप से आनंद प्राप्त करना है, इंद्र तृप्ति करनी है, तो आप भौतिक जगत में चले जाओ। लेकिन फिर भगवान शास्त्र में बताते हैं कि इस संसार में केवल दुख ही दुख रखे हैं, केवल दुखी दुखालयम अशाश्वतम, कुछ भी यहाँ पर शाश्वत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप आके यदि भगवान की भक्ति करें तो फिर एमं प्राप्य भजस्वम, तो आप आध्यात्मिक लोक में जाकर सुखी हो सकते हो। तो वास्तव में हम भगवान की चिन्मय देह से उत्पन्न, और अगर चिन्मय देह से उत्पन्न हुए भी हैं तो वैसे ही जैसे किसी मनुष्य के बालों में जू बन जाती है, या फिर जब हम पसीने में पसीना होता है, मार्केट में जाते हैं और फिर हमारे पसीने में कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो वो सब होते तो हमारे अंश हैं, लेकिन वो हमारे चिन्मय देह से नहीं बसी। तो जैसे गंध है, गंध वो हमारे जिस्म की एक तरह से गंदगी, उसी तरह से हम भी भगवान के चिन्मय देह से उत्पन्न हुए, उनके शाश्वत संतान नहीं। लेकिन ये भगवान की करुणा है कि फिर भी भगवान हमें स्वीकार करते। भगवान कहते हैं ममाई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरे अंश हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त कष्टों से मुक्त करके अपने धाम में प्रवेश दूंगा। तो यहाँ पर कोई अगर कहता है कि इस संसार में कितने सारे दुखी जीव हैं, उन इतने सारे दुखी हैं, फिर भी भगवान सदैव आनंदित होते हैं, हम भगवान की संतान हैं, और संतान को यदि कोई दुख पहुंचता है तो माता पिता को भी दुख होता है, तो हमें दुखी देखकर भगवान को दुख नहीं होता। हमें दुखी देखकर अब किसी के कोई अगर कोई जू है, उसको दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या टांग में दर्द हो गया, या फिर कुछ हो गया, तो क्या उससे उस व्यक्ति को दुख होगा? वो व्यक्ति क्या करे? अगर उसके शरीर के कोई बैक्टीरिया तकलीफ में है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना? उसी तरह से भगवान के ये जो अंश हैं वो बिल्कुल इसी तरह निकृष्ट अंश हैं। यदि वो दुखी हैं, हम लोग चाहे दुखी हो, लड़े मरे, कुछ भी करें, भगवान दुखी नहीं हो सकते। भगवान को कोई दुख होता ही नहीं है, भगवान आनंदमय है। और जीव तब तक दुखी है जब तक वो अपना संबंध भगवान से निर्माण नहीं करता। भगवान उसे न्योता दे रहे हैं, भगवान बारंबार शास्त्रों में कहते हैं, शुद्ध भक्तों के द्वारा कहलवाते हैं कि यदि तुम्हें दुखों से बचना है तो उसका एक ही तरीका है, तुम मेरी शरण में आ जाओ। तुम आ जाओ, तुमने कितने भी अपराध किए हैं, तुम कितने पापी हो, तुम जो भी हो, मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समस्त दुखों से, तुम्हारे सारे दुखों का निवारण करूंगा, अपने चिन्मय धाम में तुम्हें प्रवेश दूंगा, अपने चिन्मय संगियों में तुम्हें आसन दूंगा, तुम्हें अपने साथ रखूंगा, इस दुखमय दुनिया में वापस नहीं भेजूंगा। लेकिन फिर भी जीव है ना, ये सोचता है कि मैं आनंदित होना चाहता हूँ, लेकिन भगवान तुमसे तुम्हारे द्वारा आनंदित हूँ, लेकिन तुम्हारी सेवा करके नहीं। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं, सेवा तो तुम्हें करनी पड़ेगी, मेरी सेवा करो आनंदित हो जाओ, या माया की सेवा करो और आनंदित होने का जीवन भर परिश्रम करते रहो, मगर तुम्हें कुछ हाथ नहीं आएगा। फिर भी इतना बताने के बाद भी हम जैसे बुद्धिहीन व्यक्ति जो है वो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, लेकिन इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसकी शरण में आता है, कौन नहीं आता है। अगर कोई भगवान की शरण में आता है तो उसमें उसका अपना फायदा है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जैसे कीड़े मकोड़े भगवान की आरती करते हैं नहीं करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं नहीं लगाते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं नहीं करते, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम यदि भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की कथा लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो उससे आनंद हमें आएगा, प्रोटेक्शन हमें मिलेगी, हमें ही सुख मिलेगा, हमें ही भगवान का धाम मिलेगा। भगवान तो चिन्मय है, आनंदमय है, उसकी कोई भक्ति करता है हम जैसे भौतिक जगत में क्या है, भौतिक जगत के 25% जीव हैं, यदि वो भगवान की भक्ति नहीं भी करते हैं तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर 75% आध्यात्मिक लोग हैं जिन जो कंटिन्यूस भगवान का निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को उनकी भी आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वसुखम, जैसे हमने कल पढ़ा, स्वसुखम उपगते क्वचित त्रिहर्तुम प्रकृतिम उपे युषी यद यद भव प्रभाव। ये संसार भगवान की इच्छा से रचा जाता है और इस प्रकृति को भगवान अपनी इच्छा से विनष्ट कर देते हैं, लेकिन भगवान इनके द्वारा आनंदित नहीं होते हैं। स्वसुखम, भगवान जो है वो स्वयं ही सुखमय है, स्वयं ही आनंदमय है। ये सारा संसार भगवान के द्वारा ही सृजित होता है। भगवान जो है वो आत्मसंतुष्ट है, अपने आनंद के लिए वो अपने अंदर से ही आनंदमय वस्तुओं को प्रकट करते हैं और अपने ही आनंद में सदैव आनंदित रहते हैं। वच विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा, ऐसे कृष्ण में विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा, ऐसे कृष्ण में मेरा आत्मा सदैव लगा, यानी मेरा मन जो है वो मैं आत्मास्तु, यानी मेरा जो मन है वो सदैव इसी कृष्ण के अंदर लगा हुआ हो। मेरे मन, मैंने कल बोला कि मैं अपनी बुद्धि को सौंप रहा हूँ, मेरी जो बुद्धि है इतिमति रूप कल्पिता वित्रिष्णा, बुद्धि अब तृष्णा रहित हो गई है, भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि, अपनी बुद्धि को मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूँ। और आज कहते हैं विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा, मैं अपनी आत्मा को कृष्ण को समर्पित करता हूँ, मेरा मन सदैव उसी कृष्ण के अंदर समाया हुआ हो। यानी वो कृष्ण जो युद्ध भूमि में रथ चलाते हैं, घोड़ों की टापों से उड़ती हुई धूल के कारण जिनके केश दूर से सने हुए हैं, परिश्रम के कारण जिनके मुख पर पसीने की बूंदे हैं, मेरे तीखे तीखे बाणों के कारण जिनका कवच टूट गया है, शरीर से खून निकल रहा है, बाण लग रहे हैं, फिर भी उनको आनंद आ रहा है, ऐसे कृष्ण में मेरा आत्मा सदैव लगा हुआ हो। अनुवाद, युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, भगवान कृष्ण के लहराते हुए केश घोड़ों की तापों से उठी धूल से मटमैले हो गए थे, तथा श्रम के कारण उनके मुखमंडल पर पसीने की लड़ी बहने लगी थी, मेरे तीव्र तीरों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें और भी अच्छी लग रही थी, मेरा मन उन्हीं कृष्ण के पास चले। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान सच्चिदानंद रूप है, अतः भगवान की प्रेमा भक्ति पांच प्रमुख संबंधों अर्थात रसों, शांतरस, दास्यरस, सख्यरस, वात्सल्यरस तथा माधुर्यरस में किसी एक में वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से की जाती है तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। श्री भीष्मदेव दास्य भाव से भगवान के महान भक्त हैं, अतएव भगवान के दिव्य शरीर पर तीव्र वाणों की वर्षा अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई पुष्प वर्षा के समान है। यहाँ पर भीष्म देव कह रहे हैं कि मैं आपको तीर मार रहा था, आपका कवच भेदन हो गया था और आपको घाव भी लग रहे थे, लेकिन उससे भी आप आनंदित हो रहे थे। वास्तव में क्योंकि उस समय भगवान क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे थे, तो क्षत्रिय की तरह वो आचरण भी करना चाहते थे। भगवान अपने भक्त का और भक्त अपने भगवान का मनोरथ जानते हैं। भीष्म पितामह जानते थे कि भगवान अभी वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं। पितामह तीर मारे जा रहे हैं, कृष्ण को घाव लग रहे हैं और वो भी कृष्ण को आनंदित कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो क्षत्रिय के आवेश में, अगर कोई क्षत्रिय युद्ध में आए और दो चार बाण ना लगे तो मजा नहीं आएगा ना, कुछ बाण तो लगने चाहिए। ये भी एक रस है, ये भी एक आनंद है। भक्त और भगवान जो हैं, उनकी बातों को, उनके कार्यों को कोई हम जैसा बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं समझ सकता। भगवान को ये बाण भी पुष्प वर्षा के समान लग रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के साथ भीष्म देव ने जो कुछ किया था उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में अपने दिव्य शरीर के कारण भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी। उनका शरीर पदार्थ नहीं है, साक्षात वे तथा उनका शरीर दोनों ही पूर्ण आध्यात्मिक हैं। आत्मा को ना तो छेदा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है। नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न सैनम गेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जो भौतिक प्रकृति है उनके जितने भी पदार्थ हैं उनको विनष्ट किया जा सकता है, या तो जलाया जा सकता है, या तो सुखाया जा सकता है, या तो गलाया जा सकता है, या तो टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है, परंतु आत्मा के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। और भगवान क्योंकि भौतिक प्रकृति का अंश नहीं है, साक्षात चिन्मय देह है उनकी, तो भगवान को कोई क्षति नहीं पहुंच सकती है। इसकी विशुद्ध व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में हुई है और स्कंद पुराण में ही ऐसा ही कथन मिलता है। इसमें कहा गया है कि आत्मा सदैव कल्मषहीन तथा अविनाशी है, ना तो उसे कष्ट दिया जा सकता है और ना ही उसे सुखाया जा सकता है। जब विष्णु अवतार लेकर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, वे बद्ध जीवों के समान सांसारिक बंधन से जकड़े हुए लगते हैं, लेकिन वे ऐसा असुरों या अविश्वासियों को मोहित करने के लिए करते हैं। जो भगवान को उनके अवतार लेने के प्रारंभ से ही मारने की ताक में रहते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, नाहं प्रकाशः सर्वसा लोकमाया समावृता मूढोयं नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम्। 7.25 में भगवान ने बताया कि मैं हर किसी के सामने भगवान होकर प्रकट नहीं होता हूँ। जो मूर्ख है वो तो मुझे समझ भी नहीं सकते, क्योंकि योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। आगे श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, कंस कृष्ण को और रावण राम को मारना चाह रहे थे, क्योंकि मूर्खतावश वे इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि भगवान कभी मारे नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा का विनाश नहीं होता है। अतएव भीष्म देव द्वारा भगवान श्री कृष्ण के शरीर को बाणों से भेदना अभक्त